प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम डॉक्टर लुका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हर इंसान अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है और वो एक अच्छा एवं स्वास्थ्यमय जीवन व्यतीत करना चाहता है, लेकिन समय अभाव के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज से हम कार्यक्रम डॉक्टर लुका की एक नई श्रृंखला आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आप विभिन्न बीमारियों के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही इसके उपचार और निवारण के बारे में भी बताया जाएगा। इस कार्यक्रम के द्वारा आप शारीरिक एवं आत्मिक चंगाई के बारे में भी जान सकेंगे। तो श्रोता, आज हम इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे डॉक्टर लुका का परिचय। तो आइए सुनते हैं आज की ये चर्चा।
प्रिय मित्रों, आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार और मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। यह श्रृंखला का पहला संदेश है जिसमें हम स्वास्थ्य के मूल विचार पर ध्यान करेंगे। निश्चित तौर पर जब हम स्वस्थ रहते हैं तो न केवल हम अच्छा महसूस करते हैं बल्कि अच्छा और ज्यादा काम भी करते हैं। चाहे हम कितने भी अच्छे और स्वस्थ रहें, आखिर हम मरेंगे। चाहे हमारा स्वास्थ्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हमें दुख तो होता है। यह दुख चाहे शारीरिक या मानसिक हो या एक ही समय में दोनों हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, मैं आपको यह बता दूं कि यद्यपि बाइबल स्वास्थ्य के विषय में बहुत कुछ सिखाती है, वास्तव में नए नियम के प्रमुख लेखकों में एक लेखक वैद्य था जिसका नाम वैद्य लुका था। ये वैद्य लुका आप सोच रहे होंगे कौन था। मैं आपको बता दूं, लुका एक वैद्य था जो 2000 वर्ष पूर्व आज के इसराइल देश में रहता था। वो यीशु के एकदम बाद आया। यीशु की पृष्ठभूमि यहूदी थी जबकि लुका के वंशज यूनानी मूल के थे। यूनानी भाषा उस समय की परिपक्व एवं विकसित भाषा थी, इसलिए उसने इसी भाषा में लिखा। हो सकता है मित्रों, यीशु भी इब्रानी भाषा बोलता होगा। वो पलस्तीन में रहता था, यूनानी था एवं यूनानी एवं इब्रानी भाषा जानता था। लुका का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय की स्वास्थ्य सेवा एवं दवाइयों के विषय में उसे पूर्वी एवं पश्चिमी विचारों से वो बहुत अच्छी तरह से परिचित था। लुका के विषय में बात करने से अच्छा यह रहेगा कि हम स्वास्थ्य संबंधी उसके लेख पर विचार करें कि वो क्या कहता है। यह इतना जरूरी नहीं है कि लुका स्वास्थ्य के विषय में कितना बताता है, परंतु जरूरी यह है मित्रों कि वो उस व्यक्ति के बारे में क्या बताता है जो चंगा कर सकता है। यह बहुत ही महत्व की बात है कि व्यक्ति स्वस्थ हो तथा उस डॉक्टर को भी जाने जो उसे स्वस्थ कर सकता है। लुका इस व्यक्ति के बारे में लिखता है। लुका लिखता है कि बहुत से लोगों ने इन बातों को लिखने का कार्य किया जो हमारे समय में हुई थीं और जो बातें हमें प्रत्यक्ष दर्शियों द्वारा सौंपी गईं। मैंने भी सावधानी पूर्वक खोज की और मुझे ये भाया कि हे थियोफिलुस, तुझे कुछ लिखूं जिससे कि तू इन बातों की सच्चाई को जान सके जिसकी शिक्षा तुझे दी गई है। वो यह भी लिखता है कि उसने अच्छा स्वास्थ्य देने वाले के विषय में खोज की। पहले उसने बहुत गवाहों से बात की ताकि वो इन बातों को सिलसिलेवार रूप से लिख सके, ताकि उसके लिखे हुए पर विश्वास हो ज्यों की त्यों हैं या नहीं, जिनकी उसने शिक्षा पाई है। प्रिय मित्रों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, लुका यहाँ लिख रहा है कि कैसे उसने उस चंगाई देने वाले के विषय में सूचनाएं इकट्ठा की। पहले उसने अच्छे गवाह ढूंढे, इसके बाद सिलसिलेवार या हम यह कह सकते हैं कि क्रमानुसार लिखा ताकि वे उसके लेखों की सच्चाई जाने कि क्या वे सच्ची हैं। यह कौन है जिसके बारे में लुका लिखता है कि वो चंगाई दे सकता है। यीशु शिमोन के घर में गया और यहाँ उसकी सास बुखार से पीड़ित थी। उन्होंने यीशु से सहायता मांगी। यीशु ने झुककर बुखार को डांटा और बुखार उतर गया। वो तुरंत उठकर उनकी सेवा करने लगी। शाम के समय लोग यीशु के पास हर प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों को लाते थे और यीशु उन पर हाथ रखकर उनको चंगाई देता था। वो लोगों को न केवल बुखार से चंगा कर सकता था बल्कि अन्य बीमारियों से भी चंगा कर सकता था। उसके पास लोगों को तुरंत चंगा करने की सामर्थ्य एवं अधिकार था। क्या ये अजीब बात नहीं है मित्रों? कैसे वो बहुत सी बीमारियों को चंगा कर सकता था? क्या उसने कोई विशेष प्रशिक्षण पाया था? अब आपके मन में यह भी विचार आ रहा होगा, क्या उसके पास कोई विशेष सामर्थ्य थी? उसने ये कैसे किया? ये कैसे होता था? क्या उसके पास झूठा दिखावा करने वाले थे? आइए इसके विषय में लुका दूसरे लेखों में क्या लिखता है देखते हैं। एक दिन जब यीशु लोगों को सिखा रहा था, गलील, यहूदिया एवं यरूशलेम के हर गांव से अगुवे उसके पास आए और परमेश्वर की आत्मा चंगा करने के लिए उसके साथ थी। कुछ लोग एक लकवे के मारे को चटाई पर डालकर लाए तथा उसे यीशु के सामने लाने की उन्होंने बहुत कोशिश की। जब भीड़ के मारे वे ऐसा ना कर सके, वे छत पर जाकर उसे नीचे भीड़ के बीचों बीच में छोड़ने का प्रयास करने लगे। मित्रों, जब यीशु ने उनका विश्वास देखा, यीशु ने कहा, मित्र तेरे पाप क्षमा हुए। जब अगुओं ने यह सुना तो वे यीशु पर क्रोधित हो उठे। यह कौन है जो यह कह रहा है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने यह जानकर कि वे क्या सोच रहे हैं उनसे कहा, तुम अपने हृदय में यह क्या सोच रहे हो? क्या यह कहना आसान है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर यह कहना कि उठ और चल फिर, ताकि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने लकवे के मारे से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ कि अपनी खाट उठा और चल फिर। वह तुरंत ही खड़ा हुआ और अपना सब कुछ लेकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ चला गया। जब लोगों ने, जिन्होंने यह देखा था, आश्चर्य से भर कर कहने लगे, आज हमने आश्चर्यजनक बात देखी है। एक और घटना है जिसके विषय में वैद्य लूका यीशु के विषय में बताता है। इस घटना से हमें यीशु एवं उसके इस संसार में रहने वालों की चंगाई के विषय में सीखने को मिलता है। कौन सी बात हम इससे सीखते हैं? पहली बात, वो बहुत प्रसिद्ध था। उस क्षेत्र एवं आसपास के गाँव के लोग उसकी सुनने को आते थे, और साथ में जिस घर में वो सिखा रहा है लकवे के मारे के मित्रों से भरा हुआ था। दूसरी बात, यीशु के पास चंगाई की आत्मा भी थी। उसके पास उसके स्वामी की ओर से चंगा करने की आत्मा थी। उसकी आत्मा परमेश्वर की ओर से थी। तीसरी बात, मित्रों, हम जानते हैं कि यीशु लोगों को शारीरिक चंगाई देने के साथ आत्मिक बीमारी से भी चंगाई देता था। वो कौन सी आत्मिक बीमारी है जिसे यीशु ने इस आदमी के जीवन से ठीक किया? मित्रों, मैं आपको बता दूं, इस बीमारी का नाम है पाप। यह बड़ी अजीब बात है कि यीशु ने केवल शारीरिक बीमारियों को चंगाई नहीं दी, बल्कि आत्मिक बीमारियों को भी चंगा किया। मेरे मित्रों, चंगाई बहुत कठिन है, क्योंकि डॉक्टर बहुत महंगा हो सकता है, इसमें दुख भी है और कई बार इलाज काम नहीं करता है। स्पष्ट रूप से यीशु के लिए पाप क्षमा एवं चंगाई करना कठिन कार्य नहीं था। चौथी बात जो इस घटना से हम सीखते हैं मित्रों, वो यह है कि यीशु केवल हमें बाहर से ही नहीं जानता है, परंतु हमारे दिमाग में क्या चल रहा है यीशु उसे भी जानता है। यदि वे लोगों के विचारों को जानता है तो हमारे विचारों को भी जानता है। पांचवी बात, यीशु अपने को मनुष्य का पुत्र कहता है। वो यह भी कहता है कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। अब मित्रों, मैं जानता हूं कि आप यह सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि यीशु का संबंध परमेश्वर से है। अंत में हम लकवे के मारे को उठकर चलता हुआ देखते हैं। निश्चित रूप से यह झूठ नहीं है, क्योंकि सब लोग इस आदमी को जानते होंगे। इस तरह यीशु ने, प्रिय मित्रों, बहुतों को चंगा किया। अब तक हमने देखा कि लूका यीशु के विषय में लिख रहा है, जिसने लोगों की बहुत सी बीमारियों को चंगा किया। यहाँ तक कि लकवे जैसे भयंकर बीमारी को भी उसने चंगा किया। वो यह भी लिखता है कि यीशु ने न केवल लोगों को शारीरिक चंगाई दी, बल्कि आत्मिक चंगाई भी दी। इस आत्मिक रोग का नाम है पाप, या परमेश्वर द्वारा ठहराए हुए लक्ष्य से चूक जाना। मित्रों, शारीरिक एवं मानसिक रूप से चंगाई पाना क्यों जरूरी है? प्राचीन एवं वर्तमान चिकित्सा दोनों यह मानती हैं, लोग जो शारीरिक मानसिक बीमारियों जैसे तनाव, चिंता आदि रोगों से पीड़ित हैं, वे पाप के कारण इससे पीड़ित हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, लोग चोरी छल करते हैं एवं झूठ बोलते हैं, इसके बाद उन्हें बुरा लगता है, परंतु इसके बाद वो माफ़ी मांगकर चुराई हुई चीज़ों को लौटाते नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें बुरा लगता है, जिसमें कई दिन, सप्ताह एवं कई वर्ष लग जाते हैं। यह बुरा लगना ग्लानि में बदल जाता है, जिसके कारण तनाव होता है। कई डॉक्टर यह मानते हैं कि भयंकर तनाव के कारण हृदय रोग हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण है क्रोध। ऐसे लोगों को रक्तचाप हो जाता है। यदि इसका इलाज ना किया जाए तो इससे दिल का दौरा पड़ जाता है। मित्रों, यीशु लकवे के मारे को शारीरिक रूप से एवं पाप से पूर्ण चंगाई देता है। बहुत संभव है कि वो लकवे से तो चंगा हो जाता है, परंतु शायद दूसरी बीमारियां उसके अंदर रह जाती हैं। इन घटनाओं में यीशु की शारीरिक एवं आत्मिक चंगाई की सामर्थ्य को हम देखते हैं। मान लीजिए कि यीशु हमें शारीरिक रूप से तो चंगाई देता है, परंतु बाद में तो हम शारीरिक समस्या के कारण ही मर जाएंगे। अभी तो हमें आराम मिलेगा, परंतु इसका क्या कि हम मरेंगे? क्या यीशु का अधिकार केवल बीमारियों पर ही है? परंतु मृत्यु के बाद क्या होगा? क्या यीशु का अधिकार मृत्यु पर नहीं है? प्रिय मित्रों, लूका एक जवान के विषय में लिखता है जो मर चुका था। वो इस प्रकार लिखता है, यीशु नगर के द्वार तक पहुंचा और लोग एक मरे हुए व्यक्ति को बाहर ले जा रहे थे। वो अपनी माता का एक लौता पुत्र था और जो विधवा थी। एक बड़ी भीड़ भी उसके साथ थी। जब यीशु ने उसे देखा तो उसे तरस आया। उसने स्त्री से कहा, रो मत। यीशु ने मृत्यु शैया को छुआ और जो उसे उठाए हुए थे वे चकित हुए। यीशु ने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ जा। और जवान उठकर बैठ गया और बातें करने लगा। और यीशु ने उस पुत्र को उसकी माँ को दे दिया। इस एक और घटना में हमें यीशु के तरस एवं मृत्यु पर अधिकार का पता चलता है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो शारीरिक आत्मिक बीमारियों को चंगा करने और मृत्यु से जिला सकता है? नहीं, ऐसा दूसरा महापुरुष, भविष्यवक्ता या शिक्षक पैदा नहीं हुआ है। इसलिए हियाव रखें। दोबारा जब आप बीमार पड़ें या पाप करें तो यीशु को मदद के लिए पुकारें। तो मित्रों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वो आपको अवश्य चंगाई देगा। लूका यीशु के विषय में अन्य घटनाओं में यह लिखता है जो हमें बाइबल में मिलती हैं। एक और महत्वपूर्ण घटना जो लूका लिखता है वो हमें बताती है कि यीशु न केवल चंगा करता है बल्कि मरे हुओं को भी जिलाता है। वो स्वयं मनुष्य के पापों के लिए मरा। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकें। अब मित्रों, आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों है? जब चोरी, बेईमानी या हत्या करने के द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर से टूट जाता है, हम पर एक कर्ज चढ़ जाता है जिसे हमें चुकाना है। परंतु हम परमेश्वर को कैसे कर्ज चुका सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं, परंतु यीशु ने यह कर्ज चुकाया। वो हमें हमारे पापों से क्षमा करने के लिए क्रूस पर मरा, और इतना ही नहीं, वो जी भी उठा। इस बात को दिखाने के लिए कि उसका शारीरिक बीमारियों, पाप की सामर्थ जो मृत्यु है, उस पर भी अधिकार है। यीशु कहता है कि यदि हम विश्वास करें कि वो हमारे पापों के लिए मरा, तो हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे। चाहे हम मर भी जाएं, वो हमें जिलाएगा ताकि हम अनंत काल तक उसके साथ रहें। मित्रों, क्या आप चाहते हैं कि यीशु आपकी शारीरिक समस्याओं के साथ आपके पापों को दूर करे? इसलिए आप यीशु को पुकारें और वो आपकी अवश्य सुनेगा। आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। प्रिय यीशु, मैंने पाप किया है। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और आप उसके पुत्र हैं। मैं यीशु में इस जीवन को अनुभव करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।
प्रिय श्रोता, अभी आप इस कार्यक्रम में डॉक्टर लूका का परिचय सुन रहे थे। यदि इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। कार्यक्रम डॉक्टर लूका, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम डॉक्टर लूका, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। आप हमसे फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09-588-20414, 09-588-20414। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, खुश रहें।